दौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर एक ओ नम सिद्धेभ्य ओ नम सिद्धेभ्य ओ नम सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् साहु वज्जायिरिये अरहंते वंदिऊण सिद्धेवी जे पंचलोगवाले वोच्छं बंधस्स सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। अभी आज से अपना ये तृतीय खंड शुरू हो जाता है। पहला खंड का नाम क्या था, भूल गए? जीवस्थान, बहुत अच्छा। और दूसरा खुद्दा बंध, जिसको क्षुद्रक बंध भी कहा था। और ये जो है तृतीय खंड है, इसका नाम है बंध सामित्व विचयो, यानी बंध स्वामित्व विचय। अब उसका अर्थ क्या है वो देखेंगे। अभी हमने जो मंगलाचरण, इसकी कुछ विशेषता ख्याल में आती है, देख के बताओ। मंगलाचरण अभी पेज नंबर एक है। ये हम आठवीं पुस्तक के पहली पुस्तक पर, पहले पेज पर है। हाँ हाँ, नहीं इसमें क्या विशेषता है, यहाँ पर भी पांचों को नमस्कार किया है। देखो देखो ऑर्डर क्या है, उसके क्रम क्या है। साधु उवज्जाय आयरिया अरहंत सिद्ध बढ़ते हुए है ना। हम हमेशा के अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वहां पर भी सिद्धों को नहीं पहले कहते, फिर यहाँ पदों की अपेक्षा से साधु वज्जाय आचार्य अरिहंत और सिद्ध इस तरह से नमस्कार किया है। और उनको पंच लोकपाल कहा है। देखो यहाँ हम उसका अर्थ देखते हैं, नीचे लिखा है ना साधु उपाध्याय आचार्य अरहंत और सिद्ध। ये जो पांच लोकपाल है अर्थात लोकोत्तम परमेष्ठी है, लोक में सबसे उत्कृष्ट है, परम इष्ट। परमेष्ठी शब्द का अर्थ समझते हैं आप? हाँ, परमेष्ठी शब्द का अर्थ क्या है? परम इष्ट है। परम ने सर्वोत्कृष्ट है, वो हमारे इष्ट भी है। ऐसा ही शब्द कैसे तैयार हुआ ये हमको पता होना चाहिए। इसको कहते शब्द की निरुक्ति, व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो ये पांचों को उत्कृष्ट कहा हुँ? और हमें क्या क्या उत्कृष्ट लगता है लोक में। अश्विन में कौन सी आ रही है? क्या कहते हैं,
परमेष्ठी का अर्थ परम पद में तिष्ठते हैं। हाँ, सभी
परम पद में तिष्ठते। हम अभी पेज नंबर एक पर है, मंगलाचरण और उसका अर्थ देख रहे थे। मंगलाचरण तो अभी हमने गाया है। इसमें विशेषता यह है कि पहले साधु, फिर उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर अरिहंत, फिर सिद्ध को याद किया। ये जो पांच लोकपाल अर्थात लोकोत्तम परमेष्ठी है, लोक में उत्तम है, और परमेष्ठी है, परम इष्ट है, और परम पद में स्थित है। आपने अच्छा याद दिलाया है, इसलिए उसका नाम है परमेष्ठी। ये उत्कृष्ट पद में स्थित है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया यहाँ पर, इन पदों की बात की। इन पदों का जो स्वरूप है, यानी वो जीव द्रव्य, उन्होंने जो कुछ वहां पर पर्याय की अपेक्षा जो कुछ प्राप्त किया है, उनका अपना स्वरूप, उसकी बात है यहाँ पर। और जिस मार्ग पर ये उन्होंने क्रम करके सिद्ध पद प्राप्त किया, हमें भी ये करने योग्य है, ये बात इसमें से जाहिर हो जाती है। तो ये तो आचार्य स्वयं इन सबको नमस्कार करके, देखो वीरसेन तो आचार्य थे, और फिर भी वो भी साधु उपाध्याय आचार्य अरहंत सिद्ध, वो भी वो ऐसा केवल अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करते ऐसा नहीं है, सबको नमस्कार करते। हाँ गणधर भी करते हैं, क्योंकि पंच नमोकार मंत्र जो है गणधर भी कहते हैं ना, वो भी आचार्य और सर्वोत्कृष्ट है, गणधरों के ही सर्वश्रेष्ठ है, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी वो उपाध्याय और गणधर में क्या फर्क है? गणधर जो है चार ज्ञान के धारी है और भगवान की वाणी को झेलकर उसका पूरा अर्थ द्वादशांग की रचना करते हैं, और उपाध्याय वो द्वादशांग के पाठी है, ख्याल में आई ना, उन्होंने वो तो सुनकर पढ़कर अभ्यास करके उसको समझा है और फिर वो बताते हैं, और इन्होंने स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की वाणी सुनकर उसकी रचना की है। अच्छा प्रश्न है आपको।
उपाध्याय जो होते हैं वो पठन पाठन की व्यवस्था रखते हैं।
वो वायर जरा पकड़ के रखना है इसी।
हेलो।
हाँ
उपाध्याय जो होते हैं वो मुनि संघ में सिखाते हैं, यानी एज ए टीचर
मुनि संघ को सिखाने की उनकी जिम्मेदारी है, और वो स्वयं द्वादशांग के पाठी होते हैं।
और आचार्य जो होते हैं वो मुनि संघ के को गणी कहते हैं, उनके मुख्य रहते हैं। और गणधर जो होते हैं वे तो जिनेंद्र भगवान के समोचरण में जो वहाँ हाजिर होते हैं पहले, उनका नाम गणधर है। वो गणधर में आचार्य पद ही होता है,
हाजिर होते हैं ना वो, तो वहाँ तो बहुत सारे हाजिर है, परंतु वो तो उनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं छूटेगी। ये वायर लूज है, उसकी आवाज आ रही बार बार। हाँ वो कौन हो सकते हैं? तो मुनिराज ही हो गए, आचार्य है वो भी, पर मुनिराज तो वहां जाके हो गए, वो दीक्षा ली वहां जाकर, उनको गणधर कहेंगे, और वो तो चार ज्ञान के धारी होते वगैरह वगैरह। गौतम गणधर के बारे पहले आचार्य होते। गौतम गणधर के बाद ये बात आ गई, ये कह रहे ये हमने कहीं चौथे पुस्तक में देखा था, कहाँ वो सामने दीक्षित होने चाहिए वगैरह ऐसा कुछ धौला में कहीं आई थे ना, हम बहुत बार हम बताते बात। हाँ दीक्षित, हाँ महीने बताया था, मगर वो पहले बात हमने धौला में शायद चौथे या नौवे पुस्तक में कहीं आई थी। हम हमेशा कहते ना वो पार्श्वनाथ के वो गणधर के शिष्य थे, वो नहीं बने और ये दूसरे बाहर के आगे बन गए। हाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ूंगी मैं मंगलाचरण का अर्थ। साधु उपाध्याय आचार्य अरहंत और सिद्ध। हाँ गणधर के बारे में, गणधर देवों के गुण और रिद्धियां, ये सिद्धांत कोश में से मैं पढ़ रही हूँ, और उसके देखो धवला नौ भाग है, मैंने नौवे भाग में था। नहीं वो तो उनकी रिद्धियां बताई है, परंतु वो वहां आकर होते ऐसा नहीं लिखा है। अष्ट रिद्धियों से सहित होते हैं। केवल रिद्धियां बताई यहाँ पर। हाँ हाँ वही हुए सब बताया। ऐसे लिखते ना, गणधर देवों की चार बुद्धियां होती, उनके बिना बारह अंगों की उत्पत्ति न होने सकने का प्रसंग आएगा। यहाँ वो हमने कहीं तो पढ़ा था ऐसा लगता है मुझे। चलो कभी आएगी तो बात देखेंगे। यहाँ तो इतनी बात बताई उनके बारे में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र से पढ़ेंगे। पहला सूत्र, जो सो बंध सामित्य विचो, ये अनुयोग द्वार, ये पूरा ही जो तृतीय खंड है उसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। जो सो बंध सामित्य विचो नाम तस्स इमो दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेण, य मिला पहली पेज पर है। हाँ, जो वह बंध स्वामित्व विचय है, यानी ये पहला तीसरा खंड पूरा, उसका यह निर्देश, ये कथन जो है ना बंध स्वामित्व विचय में, कथन कैसे होगा, ओह और आदेश की अपेक्षा दो प्रकार का है। विचय का अर्थ बताएंगे आगे, विचय का अर्थ होता है विचारना, उसकी मीमांसा करना, उसकी परीक्षा करना, यानी उसके बारे में जिसको कहें ऊहा पोह विस्तार से, हाँ उसके मीमांसा कहना जास्ता योग्य है। तो ये ओग में यानी गुणस्थानों में भी बताएंगे, आदेश यानी मार्गणाओं में भी बताएंगे विस्तार से। शंकाकार पूछते हैं किस प्रयोजन से यह सूत्र कहा जाता है, यानी ये सूत्र बताने की आवश्यकता क्या है, उसका समाधान संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बतलाने के लिए उक्त सूत्र कहा गया है। यानी अभिधेय यानी उसको जिसका नाम रखते, अभिधान यानी उसका नाम और अभिधेय जिसका नाम रखा है, यानी किसके बारे में बता रहे हैं, तो कहेंगे संबंध बता रहे, बंध विचय स्वामित्व के लिए बता रहे। देखो उसको ही अभी समझाएंगे और विस्तार से। तो जो देखो किस प्रयोजन से सूत्र कहा जाता है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बतलाने के लिए उक्त सूत्र कहा गया है। जो वह बंध स्वामित्व विचय है, इससे संबंध कहा गया, यानी किसके बारे में ये बात होगी, तो बंध स्वामित्व विचय नाम का ये जो तृतीय खंड है उसमें क्या बताने वाले हैं उसकी भी बात बता दी उन्होंने। यथा कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वारों में बंधन नामक जो छठा अनुयोग द्वार है वह चार प्रकार का है। ये हमने पहले वो धवला की उत्पत्ति कैसी वगैरह वगैरह वो पहले विस्तार से देखा था। ये प्रथम श्रुत स्कंध उसमें जो उसके 24 अधिकार समझे, उसमें से जो छठा उसका नाम है बंधन। मूल जो प्ररूपना चली ना, सूत्र रूप रचना चली आई है, तो उसमें से बंधन नाम का जो छठे नाम का नंबर का अनुयोग द्वार है वह चार प्रकार का है, बंध बंधक बंधनीय और बंध विदान। उनमें बंध नामक अधिकार जीव और कर्मों के संबंध का नय की अपेक्षा से निरूपण करता है। बंध में बंधों की चर्चा होगी। बंधक अधिकार 11 अनुयोग द्वारों से बंधकों का निरूपण करता है। अभी हमने बंधक की बात अभी पढ़ ली ना, बंधक होते हैं फिर वो एक जीव की अपेक्षा उसका स्वामित्व काल अंतर वगैरह सब बातें बतली देखिए हमने। बंधनीय नामक अधिकार, बंधनीय ने जो बंधा जाता है उसको बंधनीय कहते हैं। जैसे हमने कहते भगवान को कैसे पूजनीय है, पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, पूजा करने योग्य वो है पूजनीय, बंध होने योग्य वो है बंधनीय। तो कौन बंधे, या अभी कर्मों का बंध हो रहा है ना, तो कर्मों को यह बंधनीय कहेंगे। तो बंधनीय नामक अधिकार 23 वर्गणाओं के द्वारा, पुद्गल की 23 वर्गणाएं होती है, आपने सुना होगा, हाँ परमाणु, फिर उसके द्व्यणुक स्कंध होते, त्रियणुक स्कंध होते, असंख्यात अनुक, अनंत अनुक वगैरह वगैरह वगैरह, और उसमें वर्गणाएं भी अलग अलग होती है। अनंत परमाणुओं की कोई वर्गणा है, जीव ग्रहण करता है 5 वर्गणा होती है ना, आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, तेजो वर्गणा वगैरह वगैरह, ऐसे 23 वर्गणाएं हुए टोटल। तो 23 वर्गणाओं के द्वारा बंध योग्य और अबंध योग्य पुद्गल द्रव्य का प्ररूपण करता है। बंध योग्य पुद्गल और अबंध योग्य पुद्गल, जीव के साथ उसका बंध नहीं हो रहा है, पुद्गल के स्कंध है, उसके अलग अलग नाम है, जैसे महास्कंध है नाम, नहीं पुद्गल का और जीव का जो कुछ संबंध है लेना, हाँ पुद्गल के तो स्कंध होते रहते हैं ना, केवल स्कंध वो बंध, उसको बंध नहीं, बंधनीय नहीं कहा, जीव के साथ जो बंध हो रहे हैं, 23 वर्गणाओं में से जीव के साथ कौन से बंध है उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। जो यह बंध विधान है, हम ऐसा भी कहते हैं ना, योग्य द्रव्य अयोग्य द्रव्य, जैसे जीव बांधता है, कर्म बांधता है, तो कर्म होने योग्य द्रव्य उसको योग्य द्रव्य कहते हैं, और अयोग्य द्रव्य कर्माण वर्गण है वो कर्म रूप से बंधेगी, अन्य वर्गणा कर्म रूप नहीं होगी। समझ में, कौन सी वर्गणा कुछ रूप होती है उसकी चर्चा उसमें है। जो यह बंध विधान है, चार बातें बताए ना, बंध बंधक बंधनी और बंध विधान, चौथा जो यह बंध विधान है वह चार प्रकार का है। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सीखे कि चार प्रकार के जो बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। उनमें प्रकृति बंध दो प्रकार का है, मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध। मूल प्रकृतियां मालूम है, आठ प्रकृतियां जो मूल प्रकृति, ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी अंतराय, फिर वेदनीय आयु नाम और गोत्र, तो ये मूल प्रकृतियां कहते हैं। और उत्तर प्रकृतियां ने उसके जो भेद है उसको कहेंगे उत्तर प्रकृतियां, बेटा भेद कहो, सब डिविजन कहो, ये आठ के ही और उत्तर भेद जिसको कहते हैं। जो मूल प्रकृति बंध है वह दो प्रकार का है, एक है एक मूल प्रकृति बंध और एक अव्योगाढ़ मूल प्रकृति बंध। जो अव्योगाढ़ मूल प्रकृति बंध है वह दो प्रकार का है, भुजगार बंध और प्रकृति स्थान बंध। प्रकृति स्थान यानी कितने प्रकृतियों का स्थान है, वो कितनी प्रकृतियां बनती है उसको प्रकृति स्थान बंध कहेंगे। बंध जब होता है तो प्रकृतियों के स्थान, ये बंध स्थान कहेंगे उसको, प्रकृतियों के बंध स्थान अलग अलग जो होते हैं। भुजगार का अर्थ होता है जो पहले कम प्रकृतियां बनती थी, बाद अलग बांधेगी या कम बनेगी, भुजगार अल्पतर वगैरह वगैरह। उनमें उत्तर प्रकृति बंध के समुत्कीर्तन आदि, समुत्कीर्तन नहीं है इसका बंध होता है वो कह देना, वो समुत्कीर्तन होते हैं आदि 24 अनुयोग द्वार है, यानी 24 अलग अलग, जैसे अभी हमने कितने 11 अनुयोग द्वार देखे थे ना, आपको याद है ना, एक जीव की अपेक्षा वो स्वामित्व काल अंतर अगर ऐसे ऐसे, तो उसमें 24 अनुयोग द्वार होते हैं। उसमें वो साधिबंध अनादिबंध सर्वबंध नो सर्वबंध जघन्य उत्कृष्ट वगैरह बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो कहते हैं ये 24 संयोग द्वार है, उन 24 संयोग द्वारों में बंध स्वामित्व नामक अनुयोग द्वार है, 24 में से ये एक है बंध स्वामित्व, उसका ही नाम बंध स्वामित्व विचय है, ये फुल स्टॉप चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं। जो बंध स्वामित्व नाम का अनुयोग द्वार है वह बंधन और बंध विधान नाम से प्रसिद्ध प्रवाह रूप से अनादि निधन है, क्योंकि ये जो द्वादशांग के भेद बताए जाते हैं उसमें जो अभी जो बताया ना छठा अनुयोग द्वार बंधन जो बताया था वगैरह वगैरह, और उसमें चार भेद बताए थे, तो ये बंध स्वामी क्या वो बंधन और बंध विधान नाम से प्रसिद्ध प्रवाह रूप, ये जो प्रसिद्ध प्रवाह रूप जो द्वादशांग की रचना तो अनादि से बताई जाती है, प्रवाह रूप से तो अनादि से चल रही है। जो सो इस वचन से, चूंकि उनका उसका स्मरण कराया गया है इसीलिए यह निर्देश संबंध का प्ररूप निरूपक है। क्या कहते हैं, जो सो यानी जो वह, ऐसा कहने से ऑलरेडी वो चला आ रहा है और उसका संबंध बता रहे हैं, और यही अभिधेय का भी निरूपक है, वह इस प्रकार है, यानी वो अभिधेय को भी बताता है, वो क्या है कि जीव और कर्मों का, यानी बंध किसको कहना वो बता रहे, जीव और कर्मों का मिथ्यात्व असंयम कषाय और योगों से। देखो प्रमाद को उसे में गर्भित करके बताते हैं, कहीं पांच भेद बताए कहीं चार भेद बताए, ये जो कारण है बंध के कारण कौन कौन से, मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग, योगों से जो एकत्व परिणाम होता है उसे बंध कहते हैं। जीव और कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्व परिणाम हो जाता है उसका, एक दूसरे के साथ जो कुछ एक क्षेत्रावघार रूप रहते हैं और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, तो एकता का परिणाम हो जाता है, एकत्व परिणाम होता है, उसको बंध कहते हैं। कहा भी है करके यहाँ गाथा प्रस्तुत करते हैं। बंधेन य संजोगो पोगल दौवेण हो जीवस् बंधो पुण विण्णे ओ बंधवी ओपमोखो दु। जीव का पुद्गल द्रव्य से जो बंध रूप से संयोग होता है, बंधेन य संजोगो, कैसा संयोग है? बंध रूप से संयोग है, नहीं तो पुद्गल द्रव्य का तो संबंध बहुत सारा है ना, हम कपड़े गहने पहनते हो तो संबंध तो हो ही रहा है, वैसे समझ में आती है। और अन्य भी जो है, शरीर का भी तो संबंध है, अब अन्य भी वस्तुओं से तो संबंध तो होता है, एक क्षेत्र में कितने पुद्गल पड़े हैं अन्य भी, जो हमें कोई लगते नहीं लिए, क्योंकि लोकाकाश तो लिमिटेड है और उसमें अनंत अनंत इतने सब पुद्गल पड़े हैं, तो जहाँ हम स्थित है वहाँ अन्य भी तो द्रव्य भी है, अन्य द्रव्य भी और अन्य पुद्गल भी है। तो कहते कि ये बंध रूप से जो संयोग होता है उसे बंध जानना चाहिए और बंध के वियोग को मोक्ष जानना चाहिए। ये संयोग होकर वहां पड़े हैं वो तो बंधे हैं, बंधे हुए वहां पड़े हैं वो बंध है, और वो बंध से छूट जाना, बंध छूट जाना, उसका वियोग हो जाना, उसको मोक्ष कहेंगे। इस बंध का जो स्वामित्व है वह बंध स्वामित्व है, उसका विचय, विचय ने विचारना, उसकी मीमांसा करना और परीक्षा, ये एकार्थक शब्द है ने, इसको भी सिनोनिमस, हाँ एक ही अर्थ बताने वाले ये शब्द है। उस बंध स्वामित्व विचय का यह दो प्रकार का निर्देश है। ये विचय कहाँ शब्द सुना है? हाँ लक्ष्मी, विचार है वो, हाँ देखो धर्म ध्यान के भेद, हाँ भेद धर्म ध्यान के भेद मालूम है आपको, चार भेद है धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, आज्ञा ने जो तत्व बताया, आज्ञा ने वो अभी खाना खाओ या अभी घूमने जाओ, वो आज्ञा नहीं है, उनका उपदेश ग्रहण करके सरल रूप से उसको स्वीकार करना, अधिक बुद्धि भी नहीं है फिर भी वो आज्ञा विचय कहता है, धर्म ध्यान उस संबंधी विचार करना, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। संस्थान लास्ट में आता है, हाँ विपाक विचय, यानी कर्मों के विपाक यानी उदय के संबंध में कर्म के फल संबंधी जो विचार करना, उस संबंधी जो ध्यान होता है उसको विपाक विचय कहते हैं। अपाय विचय यानी उपाय करना, ये बंध से छूटने का उपाय क्या है उसके बारे में जो ध्यान है ना, उस विषय पर बारंबार चिंतन चलता है, उसको कहते हैं अपाय विचय। और एक संस्थान विचय, ये तो मुख्य रूप से तो मुनियों के बताया है, संस्थान विचय ने त्रिलोक की जो रचना है, पूरे जो हम देखते हैं ना सारे स्वर्गों के विमान है, नरकों में उसके बिल है, कहाँ कितने नारकी है, क्या कौन मरकर कहाँ जाता है, ये सभी जो हम यहाँ जो देख रहे हैं तीन लोक की रचना में, त्रिलोक सार हमने पढ़ा ना, वो क्या है सारा, उस संबंधी ही जो वहाँ चिंतन चलेगा उसको कहेंगे संस्थान विचय धर्म ध्यान। वहाँ विचय शब्द आया था, यहाँ पर भी ये विचय शब्द आया, उसकी मीमांसा, उसकी विचारना, उसकी परीक्षा। अब ये बंध स्वामित्व विचय का यह दो प्रकार का निर्देश है, अभी बताए ना ओग से और आदेश से, कल शाम को पूछा था ना आदेश का, आदेश यानी ऑर्डर नहीं ऐसा है वहाँ, आदेश यानी कथन, ऐसे अर्थ में वहाँ आता है शब्द, पंचास्तिका में अभी चल रहा है, हाँ आदेश यानी कथन की, अब कथन से। अब यहाँ दो प्रकार का निर्देश है, ओग यानी गुणस्थानों में और आदेश यानी मार्गनास्थानों में। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, यहाँ तो इतना ही बताया सूत्र में कि दो प्रकार का निर्देश है, आदेश ओग से और आदेश से, इसलिए यहाँ उसका प्रयोजन भी कहना चाहिए। शंकाकार पूछते हैं यहाँ किस लिए बंध के स्वामित्व को कहा जाता है, उसका समाधान, सत्व द्रव्य क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्पबोधत्व और गत्यागति, गति और आगति बंधक रूप से जाने गए। देखो सत्व ने उसकी जो सत्ता है, द्रव्य क्षेत्र द्रव्य में उसकी तो संख्या भी ले लेते हम, हाँ क्षेत्र स्पर्शन काल जो अभी हम जो अनुयोग द्वारों की बात हमने देख ली थी, तो बंधक रूप से जाने गए 14 गुण स्थानों के बंध विशेष के अज्ञात होने पर, ये कौन बंधक है कौन से उसकी जो अलग अलग हमने जो अभी प्ररूपणाएं देखी थी बस इतना ही हमने देखा, पर उसके बंध विशेष यानी विशेषताएं उसके डिटेल्स तो नहीं जाने, केवल बंधक है बंधक है बंधक है कहा, तो कौन से प्रकृतियों के कौन बंधक है कहा, कौन से गुणस्थान वाले कौन से बंध कर सकते कौन से नहीं करते, वो तो बात कुछ मालूम नहीं हुई, केवल बंधक है बस इतना बताया गया। हमने जो अभी बंधक प्ररूपणा देख ली यहाँ पर शूद्रक बंध में, तो ऐसे वो बंध विशेष के अज्ञात होने पर यानी अभी हमको पता नहीं उसके बारे में, उस संबंधी अज्ञान है, बंधकत्व व बंध निमित्तक गति आगति भले प्रकार ज्ञात नहीं हो सकती, यानी वो बंधक बंधकत्व ने बंधक बना और बंध निमित्तक गति आगति, बंध के निमित्त से जो कुछ गमनागमन होता है गति आगति होती है, कौन से जीव कहाँ कौन से गति में जन्म लेता है कौन आना आगति यानी कहीं से मरकर कहीं जाना, ये सब कौन से जीव कौन से प्रकृतियां बांध सकते वो मरकर कहाँ जा सकते वो बात हम तभी कह सकेंगे, जैसे एक इंद्रिय जीव देवगति नरगति तो बांधते ही नहीं सकते तो वहां जाएंगे भी नहीं, नारकी तो एक इंद्रिय जाति भी नहीं बांधेंगे केवल पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे, ऐसी जो विशेषताएं है ये गुणस्थानों में जो विशेषता है, यहाँ तो पहले गुणस्थानों की बात करेंगे फिर मार्गणास्थानों की बात करेंगे, तो विशेषता नहीं जानेंगे हम तो ये कौन से जीवों की यानी कौन सी प्रकृतियां बनती वो मरकर कहाँ जा सकते कौन कौन से उनके परिणाम कैसे हो सकते हैं, इस संबंधी अभी अज्ञात होने पर हम उसको भली भांति नहीं जान सकते, लिखा ना गति आगति भले प्रकार ज्ञात नहीं हो सकती, ऐसा जानकर 14 गुणस्थानों को अधिकृत करके यानी 14 गुणस्थानों की अपेक्षा अल्पायु शिष्यों के अनुग्रह के लिए बंध विशेष कहा जाता है। यानी शॉर्ट में बता रहे हैं ना उसका निर्देश ओग और आदेश के भेद से दो प्रकार का है, अप्पाउ आण मणुगहट्ठम शंका, वह निर्देश तीन प्रकार का क्यों नहीं होता, ओग और आदेश दो ही प्रकार का क्यों कहा, समाधान नहीं होता क्योंकि वचन का प्रयोग पर के लिए होता है, क्या कहते हैं ये जो उपदेश कहो वाणी हो किसके लिए, तो समझने के लिए वचन की क्या आवश्यकता है, पर को समझाना है तो वचन की आवश्यकता होती है, तो वचन का प्रयोग पर के लिए होता है, और पर भी दो नयों को छोड़कर है नहीं, यानी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, यानी द्रव्यार्थिक नये से समझने वाले और पर्यायार्थिक नये से समझने वाले, तो ये दो ही नये हो गए जिससे तीन प्रकार की या एक प्रकार की प्ररूपना हो सके। ओग निर्देश द्रव्यार्थिक नये वालों का और इतर यानी जो ओग नहीं है वो क्या है, तो आदेश निर्देश पर्यायार्थिक नये वालों का अनुग्रह करता है यानी उपकार करता है यानी उसको समझाता है, यानी ओग से जो कथन है वो द्रव्यार्थिक नये से समझाने वाला है, आदेश से उसके और डिटेल में चले जाते हैं, वो पर्यायार्थिक यानी पर्याय की भेदों की अपेक्षा उसकी चर्चा हो जाती है, पर्यायार्थिक का अर्थ होता है वो भेद करके उसका कथन करना। अब हम आते पृष्ठ संख्या 4 पर, ओघेण, अभी ओग से बताना चालू करते हैं, ओघेण यानी ओग में क्या क्या बताएंगे तो बताते हैं, बंध सामित्य विचयस्य 14 जीव समासाणी नादववाणी भवंती, ओघ की अपेक्षा क हुआ है की करो, ओघ की अपेक्षा बंध स्वामित्व विचय के 14 जीव समास जानने योग्य, जहां यहाँ जीव समास कहा है गुणस्थान के लिए जीव समास शब्द आता है यहाँ पर, हाँ नहीं पूर्व पहले भी आ चुका है, जीवस्थान में पहले आया था पहली पुस्तक में आया था जीव समास कहा था गुणस्थानों के लिए, जो हम 14 जीव समास कहते हैं ना वो तो सूक्ष्म एक केंद्रीय बादर एक केंद्रीय बिंद्रीय उसको भी कहते हैं और गुणस्थानों को भी जीव समास कहते हैं, ये पद्धति है, पहली पुस्तक से वो ये बात हुई थी शायद, पहली दूसरी वो सत्प्ररूपणा वगैरह आई थी ना, तभी जीव समाज के यानी गुणस्थान और मार्गणा बताए थे उसमें सारे। देखो फिर पढ़ती हूँ। ओ की अपेक्षा बंध स्वामित्व विचय के 14 जीव समाज जानने योग्य है, यानी वो गुणस्थानों के नाम जानने योग्य है। तो पहले बताए थे ना, पुनः भी भूल गए कि नहीं? देखो क्या कहते हैं, क्योंकि गुणस्थानों में बताने जा रहे हैं तो पहले गुणस्थानों को याद करेंगे। तो ये जानने योग्य करके सूत्र कह रहे हैं, जैसा उद्देश्य वैसा निर्देश होता है, यानी जो हमारा अभिप्राय है कहने का वैसा ही कथन होगा। इसके ज्ञापनार्थ ये बताने के लिए ओघ से ऐसा कहा है, यानी हमारा प्रयोजन क्या अभी ओघ से बताना है। देखो सूत्र में एक एक शब्द क्यों आया है उसकी यहाँ चर्चा है। बंध स्वामित्व विचय के इस संबंध में षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए, अथवा बंध स्वामित्व विचय में इस प्रकार विषय लक्षण सप्तमी विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति का निर्देश करना चाहिए। बंध स्वामित्व विचय के 14 जीव समास यानी गुणस्थान कहो, या बंध स्वामित्व विषय नाम का जो हमारा विषय चल रहा है उसमें 14 गुणस्थान बताना योग्य है। बताना योग्य है करके 14 गुणस्थानों के नाम तीसरे सूत्र में बताने वाले हैं, इसलिए पहले इंट्रोडक्शन करी कि उनके नाम हो जानना चाहिए, यहाँ पर बताना योग्य है। इसलिए शंकाकार पूछ रहे, 14 जीव समास पूर्व में जाने ही जा चुके हैं, फिर उनकी यहाँ प्ररूपणा किस लिए की जाती? पहले दो पुस्तकें तो उसी की बात है, हमने इतने सब डिटेल में सीखा है, अब यहाँ क्यों बता रहे? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कथन विस्मरणशील शिष्यों के स्मरण कराने के लिए है। ये शील शब्द लगाया, विस्मरणशील। हम कहते ना विनयशील है कोई, दयाशील है। वाह, ऐसा होता है ना, आगे का पाठ पीछे का सपाट। मराठी में कहते हैं पाठ है ना, याद होना। आगे पढ़ते जाते तो पहली बात ही सब भूल जाते हैं। अब इसके लिए अभी तीसरे सूत्र में 14 जीव समास यानी 14 गुणस्थानों के नाम यहाँ बताएंगे। ऊपर पढ़ते, मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंजद सम्मा इट्ठी, संजदा संजदा, पमत्त संजदा, अपमत्त संजदा, अपूवकरण पैठ व समा खवा, यानी दोनों उसमें ले लिया, उपशमक भी क्षपक भी, अनियट्ठी बादर सांप्राय पैठ व समा खवा, सुम सांप्राय पैठ व समा खवा, वसंत कसाय वीदराय छदुमत्था, खीण कसाय वीराय छदुमत्था, सजोगी केवली अजोगी केवली। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, नीचे ही में पढ़ेंगे। ये याद है क्या आपके 14 गुणस्थानों के नाम? नहीं, हाँ अभी यहाँ पढ़ेंगे ना तो याद रखना। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत। अभी इसके ऊपर आप 1, 2, 3, 4, तो पहले का नाम क्या, दूसरे का नाम क्या, इस तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ केवल नाम कहेंगे प्रमत्त संयत, तो आपको एकदम वो छठा गुणस्थान है ये ख्याल में आना चाहिए। तो प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक, केवल उसको अपूर्वकरण गुणस्थान भी कहते हैं, आठवां गुणस्थान। उसका पूरा नाम है अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, अनिवृत्ति बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, उसको केवल अनिवृत्तिकरण ऐसा भी कहते हैं। परंतु यहाँ बादर कषाय है, दसवें में सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए इसको बादर सांप्रायिक कहते हैं, सांप्राय ने कषाय, सूक्ष्म सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक और क्षपक। ये उपशमक करो, उपशमक हुआ है उपशमक, क्योंकि वो प्राकृत में उव कहते हैं। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त, ये 11वां गुणस्थान हो गया। क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त, देखो छद्मस्त होने पर पूर्ण वीतराग, ये गुणस्थान। हाँ हाँ, सहयोगी केवली और अयोगी केवली ये 14 जीव समास है, 14 गुण स्थान है। जीव समास कहने से एकदम चौंकना नहीं, हाँ कहीं किस अपेक्षा से नाम आते हैं तो यहाँ जीव समास है, ये गुण स्थानों की बात है, 14 गुण स्थान है। इस सूत्र का अर्थ जैसे जीव स्थान में विस्तार से कहा गया, देखो जीवस्थान यानी अभी जो पहली दो पुस्तकें, तो जीवस्थान के पहली दो पुस्तकों में हमें यही विषय बहुत विस्तार से देखा था। तो जैसे जीवस्थान में विस्तार से कहा गया है वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि जीवस्थान से यहाँ कोई विशेषता नहीं है, यानी जो गुणस्थानों का स्वरूप वहाँ बताया वो पूरा का पूरा यहाँ ख्याल में आना चाहिए। यहाँ तो केवल नामों से याद दिलाया, क्योंकि फिर दोबारा पहली दूसरी पुस्तक यहाँ लिखेंगे तो कैसा होगा। इस प्रकार 14 जीव समासों के स्वरूप का स्मरण कराकर बंध स्वामित्व के निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो बातें सभी गुणस्थानों में बंध संबंधी चलेगी, इसलिए पहले उसकी थोड़ी याद दिलाई गुणस्थानों के नामों के। पांचवी पुस्तक पेज पर चौथा सूत्र एदेसिम चौदसन्नम जीव समासाणम पैड़ी बंध वोच्छेदो कादवो भवदी, क्या कहते हैं, इन 14 जीव समासों के यानी 14 गुण स्थानों की बात है, प्रकृति बंध विच्छेद का कथन करने योग्य है। ये बंध विच्छित्ति जिसको कहते हैं, ये बंध विच्छित्ति किसको कहेंगे, जैसे पहले गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां बन सकती है और जो आगे के गुण स्थानों में नहीं बनती उसको कहेंगे ये पहले गुण स्थान की बंध विच्छित्ति है। कितनी है याद है, 16। ऐसे मिथ्यात्व है, नपुसक वेद है, वो वगैरह, वो कौन सी 16 वो बताएंगे अभी। तो ये पहले गुणस्थान में ये 16 ये आगे नहीं बनती, वो 16 की बंध विच्छित्ति पहले में है कहेंगे। दूसरे गुणस्थान की वो 25 प्रकृतियां हैं, सब आएगी वो बंध विच्छित्ति उदय विच्छित्ति सब अभी जानने योग्य है। हाँ उसको याद करना एक बार, पूरा गुणस्थानों का स्वरूप क्लियर हो जाता है उससे। तो यहाँ कहते हैं प्रकृति बंध विच्छेद का कथन करने योग्य है, क्यों करने जा रहे हैं तो पहले वो सूत्र में बताते हैं वो करने योग्य है। जैसे नाम बताने के पहले नाम कहने योग्य बता दिया, वैसे बंध विच्छित्ति कहने के पहले उसके कहते वो कहने योग्य है। शंका, यहाँ यदि जीव समासों का प्रकृति बंध विच्छेद विच्छेद बराबर लिखो ही कहा जाता है तो फिर इस ग्रंथ का बंध स्वामित्व विषय नाम कैसे घटित होगा। क्या कहते हैं, गुणस्थानों में बंध की विच्छित्ति अगर बतानी है केवल तो बंध स्वामित्व विषय ये दाम देने की क्या जरूरत थी, बंध विच्छेद इतना ही बता देते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस गुणस्थान में इतने प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है ऐसा कहने पर उसके नीचे के गुणस्थान उन प्रकृतियों के बंध के स्वामी है यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। जैसे दूसरे गुणस्थान में जो बंध विच्छित अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छेद होता है, यानी वो नीचे के पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान में बनती है वो सिद्ध हो जाता है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि विच्छेद दो प्रकार का है, ये जो विच्छित्ति दो प्रकार का है, कथन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से विच्छित्ति नहीं होती है। विच्छेद कहो विच्छित्ति कहो बात एक ही, यानी बंध रुक जाना उसको यहाँ विच्छेद कहा। तो विच्छेद दो प्रकार का है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। क्या नाम बताए, उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद। ये नाम तो आप समझते इसका अर्थ, जो जिसको जहां जिसका बंध है वहीं पर उसका विच्छेद कहना। जैसे मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति कहाँ है, कौन से पहले में, अरे पहले में तो बन रहा है ना, तो जहां वो है वहीं पर विच्छित्ति कहना ये उत्पाद अनुच्छेद है। दूसरे में है ही नहीं अभी, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध ही नहीं है, वहां पर कहना वो अनुत्पाद अनुच्छेद है। ये पहले हमने आपको उदाहरण देके समझाया था, जैसे हम देवलाली के शिविर के लिए एक साथ मिल गए, कोई कलकत्ता से आए, कोई भोपाल से आए, कोई वहाँ से आए, कोई बेंगलोर से आए, बहुत सारे पूरे देश में से आते हैं लोग। तो हमने किसी को पूछा कि आप कहाँ मिले थे और देवलाली मिले थे। कहाँ बिछुड़े बोलो? देवलाली में। अरे देवलाली में तो मिले थे, बिछुड़े कहाँ? तो जहाँ है वहीं पर बिछुड़े, ये कहने की पद्धति है। बिछुड़ना तो तब होगा जब हम जुदे हो गए तब, परंतु है वहाँ बिछुड़े ये कहने का जो प्रघात है, जिसको हम द्रव्यार्थिक नहीं कहेंगे या उत्पाद अनुच्छेद कहेंगे। और जहाँ ऑलरेडी बिछुड़ना हो जाता है वहाँ बिछुड़े कहना, तो वो दूसरा ये अनुत्पाद अनुच्छेद है। अब इसको पढ़ेंगे। नहीं, एक में नहीं होगा। वहाँ बिछुड़े तो वहाँ तो बंध है, बंध है वहीं पर उसका विच्छेद है कहना, ये उत्पादन है, ये कहने की बात है। जैसे सूक्ष्म लोभ कहाँ तक है? हाँ, तो दसवें के अंत तक है, है। तो सूक्ष्म लोभ का अंत कहाँ हुआ? दसवें में हुआ कि बारहवें में हुआ? दसवें में तो है ना, उदय है। अंत में तो क्या हुआ? अंत में भी उसमें उदय तो है ना, तो उदय है वहां पर उसका अंत कहना। और एक जब व्यय कब, व्यय रूप, वहां तो उत्पाद रूप पर्याय थी, व्यय रूप पर्याय कब होगी? बारहवें के पहले समय में व्यय रूप हुई थी। व्यय कब कहेंगे? बारहवें के पहले समय में। ये कथन के भेद है ना, ऐसा ही है ना, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। कथन में दो विवक्षाएं आती है। अभी यहां पढ़ेंगे ना तो थोड़ा इसका, क्योंकि भाषा थोड़ी न्याय की भाषा है ना, पहले ये क्या कहना चाहते हो मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, अब यहाँ से पढ़ेंगे। विच्छेद दो प्रकार का है, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। उत्पाद का अर्थ सत्व, सत्व यानी वो सत्ता है वहां पर, जत उदय की बात कर। और अनुच्छेद का अर्थ विनाश, अभाव अथवा निरूपता। निरूपता, निरूपण निरस्व करेंगे तो निरूपण का अर्थ होता है कथन, और निरूप यानी वो तो उससे रहित होना, नी दीर्घ लख है ना। उत्पाद ही अनुच्छेद, उत्पाद अनुच्छेद, इस प्रकार यहाँ कर्मधार ये समास है। ये समास यानी शब्द जो जोड़ शब्द तैयार होते उसके जो कुछ अलग अलग नाम है, ये बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, षष्ठी समास वगैरह वगैरह अन्य अन्य नाम है। तो उत्पाद ही अनुच्छेद, उसको उत्पाद अनुच्छेद कहा। उक्त कथन का अभिप्राय भाव को ही अभाव बतलाना है, जहाँ उसका सद्भाव है वहीं पर अभाव बतलाना, बताने कथन में ये डिफरेंस है। ये भाव को अभाव बताना है। यह द्रव्यार्थिक नय के आश्रित व्यवहार है, व्यवहार ये कथन है। द्रव्यार्थिक नय के आश्रित ये बताया जाता है कि जो भाव रूप है उसी को वहां अभाव रूप कहना। और यह एकांत से अर्थात सर्वथा चपल अर्थात मिथ्या नहीं है, सर्वथा मिथ्या नहीं है, क्योंकि उत्तर काल में, उत्तर काल में नेक्स्ट पर्याय में, नेक्स्ट समय में विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य पूर्व काल में भी पाया जाता है। द्रव्य का तो वही का वही द्रव्य है। उत्तर काल में नेक्स्ट समय में जिस पर्याय का विनाश होने वाला है, वो द्रव्य तो उसी से सहित था पहले। फिर पढ़ते, उत्तर काल में विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य, यानी उत्तर काल में विवक्षित, अभी हम मिथ्यात्व की बात करेंगे, पहले गुणस्थान में उसका बंध था, दूसरे अभी अन्य कहीं पर नहीं है। तो कहते यानी वो पहले से दूसरे में नहीं जाता जीव, फिर भी कहने की यही सब दूसरे में नहीं बनती, उस अपेक्षा से देखना। विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य, यानी वो द्रव्य उस पर्याय के व्यय सहित है। दूसरी हम बात करेंगे, चौथे से पांचवे में गया, तो चौथे में कौन कौन से वो कषाय बन रहे थे? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। पांचवे में अप्रत्याख्यान का बंध नहीं है, यानी अप्रत्याख्यान आवरण का बंध रुक गया, उदय भी और बंध भी जो कुछ है। तो एक समय में बनता था, नेक्स्ट समय में नहीं बन रहा है, तो द्रव्य तो वही का वही रहा ना, वही द्रव्य वो व्यय पर्याय से युक्त हो गया है, उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य ने उस पर्याय से युक्त द्रव्य। या फिर देखते, उत्तर काल में विवक्षित पर्याय के विनाश से विशिष्ट द्रव्य पूर्व काल में भी पाया जाता है, द्रव्य तो वही का वही है, इसलिए वो जहां उसका सद्भाव है जिस पर्याय का, वहीं पर उसका विनाश कहने की पद्धति है। अब आना छह पृष्ठ पर, शंका। द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में विद्यमान पर्यायों का अभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पर्याय तो वहां तो मौजूद है, उसका अभाव कैसे हुआ? समाधान, यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव है, किंतु वे वहां अप्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित है। ये अर्पित और अनर्पित दो शब्द आते हैं, जिसको मुख्य करना है उसको अर्पित कहते हैं, जिसको गौण करना है उसको अनर्पित कहते हैं। ये सूत्र है तत्वार सूत्र में। कौन सा सूत्र है, याद है? तत्वार सूत्र में सूत्र है इन दो शब्दों का। सूत्र क्या है? अर्पितानर्पित सिद्धे है, ऐसा उसका सूत्र का नाम है। यानी अर्पित और अनर्पित यानी मुख्य और गौण से उसकी सिद्धि हो जाती है। इसलिए उनके द्रव्यपना ही है, उसकी विवक्षा में पर्यायपना नहीं है। यानी पर्याय की मुख्यता नहीं है, वही द्रव्य है और उसने वहां तक बंध किया, इस तरह से बात करना है। शंकाकार पूछते हैं, अस्तित्व के वश के द्रव्य से भिन्न पर्यायों के द्रव्यत्व कैसे संभव है? यानी वो तो अन्य पर्याय है ना, द्रव्य वही भले हो परंतु पूर्व समय की पर्याय नेक्स्ट समय की पर्याय जुदी जुदी है। तो उसको जो पर्याय है ही नहीं वहां, उसको द्रव्यपना कैसे घटित कर रहे हैं? ये कहने का उनका हेतु है शंकाकार का। फिर पढ़ते, अस्तित्व के वश के द्रव्य से, यानी जो पर्याय वहां अस्तित्व में है उसके वश के द्रव्य है, वह उस पर्याय से युक्त द्रव्य जो है उससे भिन्न पर्यायों के, जो अन्य पर्याय वहां है ही नहीं है, उसको द्रव्यत्व कैसे संभव है, उसमें द्रव्यपना कैसे पाया जाता है? समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं पाई जाती, किंतु द्रव्य स्वरूप ही वे उपलब्ध होती है। यानी पर्याय द्रव्य से सर्वथा जुदी तो है ही नहीं, वो द्रव्य स्वरूप ही है। अभी पंचासी काय में यही विषय चल रहा है हमारा। शंका, यदि ऐसा है तो फिर पदार्थ के अंतिम समय के समान द्विचर्मादि समयों में अभाव का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? क्या कहना चाहते हैं? जैसे बंध विच्छित्ति अंतिम समय में कह दी तो उसके एक समय पूर्व भी कह दो ना, उसी अंतिम समय में क्यों कह रहे हैं, उसके और पहले पहले चले आओ। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंतिम समय के समान द्विचरमाधिक समयों के अभाव के साथ प्रत्याशक्ति नहीं है। क्या कहते हैं? जैसे अंतिम समय के बाद वो अभाव होने वाला ही है, उसकी प्रत्याशक्ति का अर्थ है नजदीकता, नजदीकता। यानी उसके अभाव के साथ अभी नजदीकता है, उसके नेक्स्ट समय में वो अभाव यानी वो नहीं रहने वाला, बंध नहीं रहने वाला। ऐसे उसके पूर्व समय में क्या कह सकते हैं, या उसके पूर्व समय में उसके साथ वो व्यवहार नहीं हो सकता। अभाव का व्यवहार जैसे अंतिम समय वाले पर्याय के साथ होता है, वैसे उसके पूर्व पर्यायों के साथ नहीं होता। यानी कहीं पर भी सद्भाव है और उसका व्यय होता है, ऐसा नहीं कह सकते। शंका, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अभाव का व्यवहार कैसे होता है? अभाव का व्यवहार ने वहां अभाव कहने का जो प्रघात है, जो व्यवहार हो रहा है, उपचार व्यवहार ने उपचार, द्रव्यार्थिक नय से वहां अभाव का उपचार कैसे कर रहे हैं? नहीं तो व्यवहार का अर्थ उसका कोई अन्य लेना नहीं वहां पर। समाधान, यह दोष कोई दोष नहीं है, यानी ऐसा उपचार करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो है वह दोनों का अतिक्रमण कर नहीं रहता। दोनों का यानी दो जो है, जो सत है, वो दोनों का नहीं, दोनों पर्याय कहो यानी भाव और अभाव दोनों का अभाव कर नहीं, यानी वो यह जो पर्याय उत्पाद रूप है और बाद में वो अन्य पर्याय वहां आने वाली, तो दोनों पर्यायों का आश्रित कर तो द्रव्य है, ये बात बताएंगे। देखो जो है क्या होता है, वो तो द्रव्य तो है ना, वह दोनों का अतिक्रमण कर नहीं रहता, इसलिए दोनों नयों का आश्रय कर स्थित नयगम नय की अपेक्षा भाव में व अभाव में व्यवहार, भाव में अभाव रूप रूप है, अभाव रूप व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता। भावा भाव व्यवहार विरोहा भाव। भाव में वो अभाव में होना चाहिए। अभाव अभाव रूप कैसे, भाव में वो अभाव रूप कैसे होगा, वो लिखा है ना, भावा भाव व्यवहार विरोहा भावादो। भाव में वो अभाव में व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता, ऐसा शब्द करो, रूप नहीं करना। आप में रूप छपा है, मैंने मैं लिखा है, प कैसा लिखा, नहीं नहीं वो लिखते तो रूप कैसे होगा, भाव में वो अभाव रूप कैसे होगा, भाव में वो अभाव में है ना, वो रू निकाल कर मैं करो, उसमें क्या लिखा है नीचे हिंदी में क्या लिखा है, भाव में और भाव में अभाव, वो नहीं लिखा बीच में, भाव अभाव व्यवहार विरोहा भाव दो। निगम ने की अपेक्षा भाव में व अभाव में व्यवहार करने की कोई विरोध नहीं आता, या भाव में अभाव का व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता, ऐसा कहना चाहिए। वो शब्द डाला ना उसने, भाव अभाव व्यवहार विरोहा दो, ये रूल लिख दिया, आगे प नहीं लगा, उसमें क्या लिखा, केवल अभाव रखा, भाव में अभाव और आगे का, भाव में अभाव का व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता। मैं भाव में वो निकाल कर अभाव रूप करो तो चलेगा, वो निकालो और अभाव रूप करो तो चलेगा, वो निकाल कर अभाव रूप करो तो चले, या अभाव का ऐसा चले, भावा भाव व्यवहार, भाव में अभाव का या भाव में अभाव रूप व्यवहार, दोनों लिखो, भाव में अभाव का या भाव में अभाव रूप व्यवहार करने में कोई विरोध, यानी उसका उपचार करने में, भाव में ही अभाव का व्यवहार करो तो चलेगा, इस तरह से। अब ये उत्पाद अनुच्छेद की बात हो गई, अब अनुत्पाद अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुत्पाद का अर्थ है असत्व, उत्पाद का अर्थ तो सत्व, यानी जिसकी सत्ता है, जिसका भाव रूप है, उसकी बात चल रही थी। यह अनुत्पाद का अर्थ है असत्व और अनुच्छेद का अर्थ है विनाश। अनुत्पाद ही अनुच्छेद, अनुत्पादानुच्छेद है। असत का तो डालो बीच में, वो हलंत वाला तो डालना बीच में, हलंत यानी पाय मोड़ का, तो अस का हुआ है ना, वो असत का करो, खोड़ो वाला तो असत का अभाव, यह उसका आशय है, ये उसत का यहाँ हो गया, ये निकाल दो यहाँ तो, और वो वहां डालो, असत का अभाव यह उसका आशय है। अनुत्पाद अनुच्छेद का अर्थ क्या है, जो है नहीं ना, अनु असत है, उसका उसे यह प्रयोजन है, यानी जो असत है उसी को अभाव कहना, वहां सत होने पर भी उसका अभाव का उपचार किया था, क्योंकि सत के साथ असत्व विरोध है, सत सत है वो असत नहीं है, भाव है वो अभाव नहीं है, यह पर्यायार्थिक नहीं के आश्रित व्यवहार है, यानी जो जब उत्पाद रूप पर्याय थी तब उसको तो सद्भाव रूप कहा, और जहां वो व्यय रूप है और भी अभाव रूप है, जहां है नहीं वही उसका विच्छेद कहा। यहां पर चूंकि सूत्रकार ने उत्पाद अनुच्छेद का आश्रय करके ही अभाव का व्यवहार किया है, अब यहां जहां जो बंध विच्छित हम देखने जा रहे हैं सर्वत्र वो उत्पाद अनुच्छेद का आश्रय लिया है, द्रव्यार्थिक नय से ही कथन होगा, जिस गुणस्थान में बंध है हाँ उसी में उसका विच्छित्ति कहेंगे, इसलिए प्रकृति बंध का सद्भाव ही निरूपित किया गया है। इस कारण इस ग्रंथ का बंध स्वामित्व विचय नाम बन जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, बंध स्वामित्व ये कैसे बन सकता है? आप तो विच्छित्ति कह रहे हैं, पर विच्छित्ति कहने से वो उत्पाद अनुच्छेद को यहाँ विच्छित्ति कहने से उस गुणस्थान वाला उसका बंधक है ये बात सिद्ध होती है। नहीं समझे? मिथ्या तो गुणस्थान में मिथ्या तो की बंध विच्छित्ति है, तो मिथ्या तो गुणस्थान वाला मिथ्यात्व का बंधक है ये बात सिद्ध हो जाता है। वो बंध का स्वामित्व बताने का ही ये प्रयोजन है। हम कहेंगे अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में होती है, तो दूसरे और पहले दोनों गुणस्थान उसके बंधक है ये बात सिद्ध होती है। ख्याल में उनको क्या कहना है, बंध स्वामित्व विचय ये नाम कैसे सिद्ध होता है उसकी बात बता रहे। क्योंकि शंका इसे पूछी थी ना, विच्छेद की बात बता रहे और यहाँ स्वामित्व विचय नाम दे रहे हो। पांचवा नंबर का सूत्र, पंचन्नम नाना वर्णियाणम चदुन्नम दंसना वर्णियाणम जसकित्ति उच्चागोद पंचन्नम अंतरायाणम को बंधो को अबंधो। क्या पूछ रहे? अभी आपको जिसको अभ्यास है ना उसको याद आएगा ये कौन बंधक है कौन अबंधक है। पांच ज्ञानावरण का बंधक कौन है? पांच ज्ञानावरण कहाँ से कहाँ तक बनती है बोलो? एक से दस तक बनती है, बारहवें में उदय है उसका, तो दसवें तक सारे ही बंधक है कहेंगे ना। हाँ तभी पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी किसकी कहाँ बंध विच्छित्ति है ना उसकी बात यहाँ से, अभी वहां से शुरू किया अभी। देखो बंध शब्द से यहाँ बंधक का अभिप्राय प्रकट किया गया है। नहीं पढ़ा मैंने हिंदी में? अच्छा, पांच ज्ञानावर्णीय, चार दर्शनावर्णीय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनका कौन बंधक है कौन अबंधक है? बंध शब्द से यहाँ बंधक का अभिप्राय प्रकट किया गया है। ऊपर को बंधो को अबंधो कहा है, पूछा बंधो और हिंदी में बंधक कह रहे हैं, है ना? चूंकि प्रकृति समुत्कीर्तन नामक चूलिका में ज्ञानावरणादिकों का स्वरूप कहा जा चुका है। प्रकृति समुत्कीर्तन है, प्रकृतियों के नाम बताएं तो ये प्रकृति है ये प्रकृति है ये प्रकृति है, इस तरह से। अतएव अब उनका स्वरूप यहाँ नहीं कहा जाता क्योंकि ऐसा करने में पुनरुक्ति दोष आवेगा। यानी प्रकृतियों के नाम तो हमें मालूम है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह सबकी बात हो चुकी है। कौन बंधक है और कौन अबंधक है इस निर्देश से यह पृच्छा सूत्र है अथवा यह आशंका सूत्र है, ऐसा समझना चाहिए। यानी प्रश्नात्मक सूत्र करके फिर उसका उत्तर बताएंगे। इसलिए क्या मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्या सासाधन समय दृष्टि बंधक है, क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है या असंयत समय दृष्टि बंधक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बंधक है, क्या सिद्धजीव बंधक है, ऐसी यहाँ पृच्छा करनी चाहिए। एक पृच्छा में इतनी सब बातें गर्भित ये कह रहे हैं। पहले गुणस्थान से सिद्धों तक सबको एक एक का नाम लेके, चौदह गुणस्थान और सिद्ध, इनमें से बंधक कौन है? यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ क्या बंध की पूर्व में विच्छित्ति होती है? क्या कहते हैं, ये बंधर उदय में कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी ज्ञानावरणी का उदय कहाँ पर है, कहाँ तक है? उदय बारहवें तक है, और बंध कहाँ तक है? दसवें तक। तो ये पूछ रहे हैं क्या बंध की पूर्व में विच्छित्ति होती है, क्या उदय की पूर्व में विच्छित्ति होती है? ऐसे कितनी प्रकृतियां बंध की विच्छित्ति बाद में होती है और उदय की विच्छित्ति पहले होती है, आपको मालूम है कोई से? इसे बंध की विच्छित्ति ऊपर के गुणस्थान में होती है और उदय की विच्छित्ति नीचे के गुणस्थान में होती है। उदय तो चौदहवें तक है। हाँ मैंने पूछा बंध की विच्छित्ति बाद में होती है, यानी ऊपर के गुणस्थानों तक बनती है, पर उदय की विच्छित्ति नीचे के गुणस्थान में होती है, ऐसी कौन सी प्रकृति है? अश्विन भाई को नहीं याद आया? आहार, आहारक शरीर और अंग उपांग। वो कहाँ, उसका उदय तो छठे में ही है केवल, और सातवें और आठवें में बनती है। तीर्थंकर की क्या बात कर रहे, उसकी बात नहीं मैंने पूछी, ये आपका अभ्यास नहीं है, ये तो सब सीख जाओगे आप बाद में। ये पूछ रहे हैं क्या क्या इसमें से क्या क्या प्रश्न निकलते हैं, क्या बंद की विच्छेदी पहले होती कि उदय की होती है। देखो पहला प्रश्न क्या था, इन्होंने प्रश्न के बाद नंबरिंग डाले हैं, क्या बंद की पूर्व में विच्छेदी होती है, क्या उदय की पूर्व में विच्छेदी होती है, या क्या दोनों की साथ ही विच्छेदी होती है, जैसे मिथ्यात्व का बंद और उदय की गुण स्थान में है, क्या साथ में होती है, क्या अपने उदय के साथ इनका बंध होता है, क्या पर प्रकृतियों के उदय के साथ इनका बंध होता है, जिसको कहेंगे स्वोदयी और परोदयी, अपने उदय में बंध होता है क्या पर के उदय में भी इनका बंध होता है, इस तरह से जिसे साता का बंध होता है, असाता के उदय में होता है कि साता के उदय में होता है, बोलो अभी आपका असाता दोनों का ये अलग अलग प्रश्न कैसे उठ सकते हैं इसकी बात चल रही है। क्या अपने या पर दोनों के उदय के साथ इनका बंध होता है, सो पर उदय दोनों में होता है, क्या सांतर बंध होता है, क्या निरंतर बंध होता है, यानी बंध बीच बीच में छूटता है क्या कंटिन्यूस चलता ही रहता है, या क्या सांतर निरंतर दोनों टाइप का बंध होता है, क्या सनिमित्तक बंध होता है या क्या अनिमित्तक बंध होता है, यानी कुछ निमित्त के कारण बंद हो रहा है क्या बिना उसके हो रहा है, क्या गति संयुक्त बंद होता है या क्या गति संयोग से रहित बंद होता है, यानी किसी गति से सहित वो बनती है या वो गति से कोई प्रयोजन नहीं है, कितनी गति वाले जीव स्वामी है, ये सब इसमें से प्रश्न निकलते हैं। और कितनी गति वाले स्वामी नहीं है, पर्टिकुलर बंध है, कौन से गति वाले उसका बंध नहीं करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था देवगति नरक गति जो है वो तो एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय जाति तक वो नहीं बांधेंगे। बंधाध्वान कितना है, अर्थात बंध की सीमा किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है, यानी कौन सी प्रकृतियां कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनती है, उसको अध्वान कहा। क्या अंतिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, क्या प्रथम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, या अप्रथम अचरिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, यानी वो पहला या अंतिम समय छोड़कर बीच में बंध विच्छित्ति होती है, क्या बंध सादी है क्या अनादि है, सादी यानी पहले बंध नहीं था शुरू होना उसको सादी बंध कहेंगे, और अनादि बंधे ने अनादि का बंध हो, जैसे ज्ञानावरण अनादि का बनता है और साता असाता वो तो सादी बंध कहलाएंगे, ख्याल में आई। जो कितने प्रश्न निकाले उन्होंने, क्या बंध ध्रुव होता है क्या अध्रुव होता है, जैसे जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां है और वो अभव्य है तो उसको ध्रुवबंध कहेंगे, और अध्रुव जो अभव्य है उसका बंध विच्छेद करके मुख जाएंगे उसको अध्रुव कहेंगे, ये सब इसके विशेष उसके क्या क्या उसका मतलब है सब बातें आएगी। क्या अध्रुव है, ये यहां तक हो गया ना, 23 हो गए प्रश्न, इसलिए ये 23 पृच्छाएं पूछी गई, 23 प्रश्न उठते हैं इस संदर्भ में, तो ये 23 पृच्छाएं पूछी गई इस पृच्छा में अंतर्गत है ऐसा जानना चाहिए। इन्होंने तो केवल ये इतना ही पूछा था, ये ज्ञानावरणादि जो बातें पूछी थी, तो कौन बंधक है और कौन अबंधक है, तो कौन बंधक कौन अबंधक में इतनी सब खुलासा आना चाहिए। यहाँ उपयुक्त आर्ष गाथाएं, आर्ष यानी ऋषियों के द्वारा बताए हुए आर्ष कहलाती है, ऊपर का पहले हम गाथा पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे, पहले दो नंबर की पढ़ेंगे। बंधो बंध विही पुण सामित धान पच्चय विहीय एदे पंचणी योगा मग्गन ठाणे सुमग्गे जा। हाँ મગ્ન થાય માર્ગના સ્થાન. और उसका मगेज्जा चाहिए, मगेज्जा हुआ है मगेज्जो. मगे है ना वो मगेज्जो या नीचे जो लिखा ना दूसरी प्रति में मगेज्जो इति पाठा. और मैंने भी गाते समय मगेज्जा ही पढ़ा क्योंकि मगण है ना मार्गणा और उसमें मगेज्जा करना है ढूंढना. डबल ग चाहिए, डबल ग और डबल ज. इसका अर्थ देखते नीचे देखो. बंध विधि, बंध स्वामित्व, अध्वान देखा ना कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक, यानी उसकी जो मर्यादा लिमिट, अर्थात बंध सीमा. और प्रत्यय विधि, प्रत्यय ने उसके कारण, बंध के कारण जो अभी हमने देखे थे मिथ्यात्व असंयम कषाय योग वगैरह, ये पांच नियोग अनियोग मार्गणा स्थानों में खोजने योग्य है, यानी अलग अलग मार्गणाओं में उसकी बात समझने जैसी है. तीन और चार इकट्ठा इन्होंने अर्थ किया है तो हम एक साथ एक के बाद पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ दोनों का एक साथ देखेंगे. बंधोदय पूर्वं वा समं वनीयेण कस्सव परेण अन्नदरसुदयेण व शांतर विगयंतरं काच पच्चे सामित्तभिः संयुत्तध्यानेन तह चेय सामित्तं नेयौवं पयडीनं ठाणमासेज. अर्थ देखते उसका. बंध पूर्व में है, उदय पूर्व में है, या दोनों साथ है? किस कर्म का बंध निज के उदय से के साथ होता है, किसका पर के उदय के साथ, और किसका अन्य तरह के उदय के साथ, यानी स्वोदय परोदय दोनों हो सकती है. जो अभी हमने प्रश्न पढ़े उसी के लिए रेफरेंस गाथा बता रहे. कौन प्रकृति सांतर बंध वाली है और कौन निरंतर बंध वाली है, कोमा लगा लो. प्रत्यय विधि, स्वामित्व विधि, प्रत्यय ने उसके कारण बताना, उसके स्वामित्व बताना, तथा गति संयुक्त बंध अध्वान के साथ, यानी कौन से गति के युत, जिसे हम जो बंध स्थान आप शायद याद होगा 23 का बंध स्थान है तो तिर्यंच गति युत और वो अपर्याप्तों के केंद्रीय अपर्याप्तों का जो बंध था है ना, तो ऐसे उसको ये स्थान कहेंगे. तो गति संयुक्त बंधाध्वान के साथ, बंधाध्वान यानी बंध की सीमा कहां से कहां तक बनता है, वो प्रकृतियों के स्थान का आश्रय कर. ये प्रकृति स्थान यानी कौन से टोटल नंबर ऑफ प्रकृतियां बनती है उसको नंबर, उसको स्थान कहेंगे. हमने देखा जैसे नाम कर्म में कितनी प्रकृतियां बनती है, 23 बनती है या 25 बनती है या 26 बनती है, उसको स्थान कहते हैं. उसका प्रकृतियों के स्थान का आश्रय कर स्वामित्व जानना चाहिए, यानी वो कौन है उसके स्वामी वगैरह वगैरह इतने डिटेल में बताना चाहिए. अब पांच नंबर. बंधोदय पूर्वं वा समं व सपरोदये तदुभयेण सांतर निरंतरं वा चरिमे दर्शादियादिया. उसका अर्थ नीचे है देखो. बंध पूर्व में होता है, उदय पूर्व में होता है, या दोनों साथ होते हैं. वह बंध स्वोदय से परोदय से या दोनों के उदय से होता है. उक्त बंध सांतर है या निरंतर है. वह अंतिम समय में होता है या इतर समय में होता है, तथा वह सादी है या अनादि है. यहाँ इन पृच्छाओं में विषम पृच्छाओं का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है. चूंकि बंध विच्छेद इसी ग्रंथ में सूत्र सिद्ध है, वो तो बताया ही है सूत्रों में, अतः वो उसको छोड़कर प्रकृतियों के उदय विच्छेद को कहते हैं. क्योंकि यहाँ तो बंधक की विच्छित्ति का तो ये विषय ही है, वो तो बताने वाले हैं। तो कौन से प्रकृतियों का उदय कौन से गुणस्थान में रुक जाता है, उसको उदय विच्छित्ति कहते हैं। पहले उदय की विच्छित्ति बता रहे, क्योंकि उदय की उदय कहाँ कौन सा है मालूम नहीं है, तो अपने उदय में बनती है कि नहीं बनती है कैसे कहेंगे आप? सोदयी है कि परोदयी है, वो हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ हम समझाएं, उदय की विच्छित्ति आपको समझना है। उदय जैसे बंध की विच्छित्ति समझ में, कौन से गुणस्थान तक बनती है विच्छित्ति, वो तो ठीक है। अब अलग अलग प्रकृतियां कहाँ उदय रूप होती है, जिस गुणस्थान तक वो उदय रूप है, ऊपर के गुणस्थान में उदय रूप नहीं है, उसको कहेंगे उदय की विच्छित्ति। हाँ मिथ्या तो उदय है, तो ऊपर के किसी गुणस्थान में उदय नहीं है, तो कहते उदय की विच्छित्ति भी पहले गुणस्थान में है। जैसे एकेंद्रीय जाति वाले, तो क्या दूसरे तीसरे गुणस्थान वालों को, एकेंद्रियों को दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान होगा क्या? आगे का कोई कोई नहीं है, तो उसका उदय कहाँ तक है? पहले में ही है। किसी किसी प्रकृति में होगा, सब में नहीं, ख्याल में? जैसे नपुंसक वेद पहले गुणस्थान में बनता है और उसका उदय नौवे तक है, नरक गति का बंध पहले गुणस्थान में रुकता है और उसका उदय चौथे गुणस्थान तक है। अभी हम आते हैं 9 नंबर के पेज पर। हाँ रिपीट यही कर रहे हैं कि अभी उदय की विच्छित्ति बता रहे हैं। हाँ तो उदय की विच्छित्ति किसे कहना, उसकी बात हो रही थी कि जिस गुणस्थान तक उन प्रकृतियों का उदय है उसकी बात है। किसी किसी प्रकृतियों के बंध विच्छित्ति उदय विच्छित्ति एक ही गुणस्थान में होगी, ये सब प्रकृतियों के लागू नहीं होगा। हमें अभी बताए ना, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, तो उसमें जो नपुंसक वेद का बंध पहले गुणस्थान वालों को ही होता है, ऊपर नहीं होता किसी भी गुणस्थान में। उदय तो 9वें तक पाया जाता है, नरक गति का उदय तो 4थे तक है, पर बंध की विच्छित्ति तो पहले में हो गई, वो अभी बताएंगे। प्रत्येक गुणस्थान के उदय की विच्छित्ति अभी ये याद ही करना है। हाँ देखो देखो ये उदय की विच्छेद को कहते हैं। कोई बात नहीं, पहले ऐसा लगेगा रट रहे हैं रटते हैं, कोई याद नहीं था, ये बार बार यही तो सुनना है तो याद हो जाएगी। अब कहते हैं मिथ्यात्व, अभी उदय के पहले गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां उदय रूप है और बाद में जो नहीं है उसको कहेंगे पहले गुणस्थान की उदय विच्छित्ति। तो मिथ्यात्व, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, आतप, क्योंकि आतप एकेंद्रियों के होता है ना, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 10 प्रकृतियों का उदय विच्छेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। यह अंतिम समय में नहीं, ऐसा नहीं समझना कोई दूसरे में, दूसरे से जो पहले में आता है, परंतु मिथ्यात्व में ही उसका उदय ऊपर नहीं है उसका अर्थ है। यह महाकर्म प्रकृति प्रावृत का उपदेश है, क्योंकि ये सब महाकर्म प्रकृति प्रावृत से ये डिराइव्ड है सारे अनुयोगी से। ये जो षटखंडागम है ना, षटखंडागम की रचना उसी से हुई है। उदय विच्छित्ति के 2 मत है आचार्यों के, कैसे इसमें से जो है मिथ्यात्व तो है फिर नहीं आतप है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है और साधारण है, ये 5 है। किन्हीं आचार्यों का मत है ये मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, ये तो पहले में एक बंध विच्छित्ति है, परंतु एकेंद्रिय से जो चतुरिंद्रिय जाति है उसकी बंध विच्छित्ति पहले में नहीं उन्होंने दूसरे में कही। क्यों? क्योंकि संसाधन के साथ इन इनके पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होते हैं और शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वो मिथ्यात्व में चले जाते हैं, इसलिए इन पर्यायों के साथ उसका उदय उन्होंने स्वीकार किया है, परंतु उसको यहाँ उन्होंने नहीं माना है। और हमने भी अन्यत्र हमने ये भी बात देखी थी कि मारणांतिक समुद्घात में वो पर्याय में जाने वाला जीव कर सकता है, परंतु वहाँ उत्पन्न होने के बाद उसके मिथ्यात्व नहीं रहता, उसको सासादन नहीं रहता है। हम अभी इसको को ले ले, यानी इसमें दो मत है, 10 और 4 या 5 और 9, ख्याल में है ना? हाँ, जयधोला में उसको लिया है, इसे दोनों ही कथन करते, हम दोनों ही बातें लिखते हैं वहां पर उदय की विच्छित्ति में। अब यहां हमने 10 ले ली, यहां पर चूर्णी सूत्रों के कर्ता, यहां लिखे है दो मत, चूर्णी सूत्रों के कर्ता यति ऋषभ आचार्य के उपदेश से मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में 5 प्रकृतियों का उदय विच्छित्य होता है, उदय विच्छित होता है। हमने अभी बताया ना, मिथ्यात्व, आतक, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, क्योंकि 4 जाति और स्थावर, इन प्रकृतियों का उदय विच्छेद सासादन गुणस्थान में माना गया है, यानी सासादन के साथ इन पर्यायों में उत्पन्न होकर शरीर पर्याप्ति के पहले पहले मिथ्यात्व में जाता है, ऐसा किन्हीं का स्वीकार है किसी को। अब दूसरे गुणस्थान की बात, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय विच्छेद सासादन गुणस्थान, सासादन समय दृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। देखो, सासादन का अंतिम समय आप कहेंगे पहले में जाने वाले का है, वो नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि जो दूसरे गुणस्थान में उदय रूप है वो पहले गुणस्थान में भी उदय रूप है, यानी बंदर उदय की विच्छित्ति में इस तरह से लेना। अंतिम समय ने वो वहां से कौन से गुणस्थान में जाता है उसकी चर्चा नहीं लेना है, उसका नेक्स्ट गुणस्थान है उसमें वो नहीं है, बस इतनी बात। यानी वहां हमने 10 ली और यहाँ 4 ली, अगर वहां 5 लेते हैं तो 5 यहाँ ले गिनना पड़ेगा, 5 और 4 9 कहना पड़ेगा। ये पहले 10 लिए, महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के अनुसार ले लिया, यहाँ पर 10 और 4। दस और चार हो गए दो गुणस्थान की बात में। दूसरा गुणस्थान तो आसान है ना, अनंतानुबंधी 4 ले लेना। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय विच्छेद सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में होता है, इसमें मात्र एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, यानी एक ही प्रकृति है। हमने बंध विच्छित्ति में यहाँ 0 लिखा था, है ना, यहाँ हमने 10, 4 और 1 देखी। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, अब ये चौथे गुणस्थान में उदय भी है, बनती भी है, परंतु आगे वाले भी यहाँ लेना। देखो, यहाँ 17 प्रकृतियां बताएंगे, नरकायु, देवायु, नरक गति, देवगति, वैकृक शरीर, वैकृक शरीर अंगोपांग, क्योंकि इसके आगे के गुणस्थान देवों में और नारकियों में नहीं है, तो यहाँ तक उनके उदय बताए हैं। 4 अनुपूर्वी, अनुपूर्वी में 4 को लेना, क्योंकि विग्रह गति में कोई 5वां 6वां वगैरह गुणस्थान नहीं होते, अनुपूर्वी का उदय तो विग्रह गति में है, इसलिए देव गति लिया, नरक गति लिया, उन दोनों के अनुपूर्वी तो है ही है, पर मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी को भी यहीं पर ले लिया। दुर्भग, अनादय और अयशस कीर्ति, इन 17 प्रकृतियों का उदय विच्छेद असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में होता है, यानी चौथे गुणस्थान में। चौथे तक की संख्या बताएंगे तेजल, 10, 4, 1, चौथे में 17। वो 17 थोड़े याद करना कठिन हो जाए, नहीं, देखो उदय की विच्छित्ति कहाँ तक उदय है, कौन से गुणस्थान तक उदय है, बस इतनी बात है। 10 का उदय है मत करो, 10 के उदय विच्छित्ति है, इसके के आगे के गुणस्थान में उसका उदय नहीं है, नहीं तो उदय है ऐसा कहेंगे तो पूरे का उदय कहना पड़ेगा। तो पहले गुणस्थान वाले सारे क्या सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण है क्या? उदय होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, पर उदय होगा तो कहाँ होगा? तो पहले गुणस्थान में होगा, अन्यत्र नहीं हुआ, ये उसका अर्थ है। हाँ, यानी उसके आगे के गुणस्थानों में नहीं है इसलिए विच्छित्ति कहते हैं, परंतु पहले गुणस्थान में इनका उदय होना ही चाहिए ऐसा कंडीशन नहीं वहां पर। हाँ, वो कर्मों के कौन से मोहनी के बारे में ऐसा कुछ रूल लगता है, जैसे अनंतानुबंधी हम कहेंगे दूसरे तक है तो पहले दूसरे दोनों में है, चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण के उदय विच्छित्ति तो पहले 4 गुणस्थान में उसका उदय नियम से है, वो नियम से उदय वाली बात अलग है, उदय की विच्छित्ति वहां तक है, वहां तक उसका उदय पाया जाता है, इतना ही अर्थ उसका लेना। क्योंकि अभी हमने देखा ना चौथी गुणस्थान की उदय विच्छित्ति में क्या क्या लिया, अप्रत्याख्यान के चार लिया। अभी हम चार गुणस्थान तक ही रुकते हैं, चौथे के फिर दोबारा करते अप्रत्याख्यानावरण चार लिए, और फिर देवगति और नरक वालों के लिए चौथे गुणस्थान तक है वो जो, तो उनमें पाई जाने वाली प्रकृतियां बताओ, तो उसमें दोनों आयु लेना, नरकायु देवायु दोनों की गतियां लेना, और उसमें वैकृत शरीर अंगोपांग होते हैं नियम से वो भी लेना, अनुपूर्वी उन दोनों की तो लेना ही लेना, और मनुष्यानी अनुपूर्वी और तिरियंचा अनुपूर्वी को भी लेना। ये तो 14 हो गए यहाँ तक, और तीन याद रखना यहाँ पर, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति। अयशस कीर्ति का उदय चौथे तक होगा, उसके ऊपर गुणस्थान में अयशस कीर्ति का उदय नहीं है। बंद कहाँ तक है? छठे तक है। बाद में कुछ कुछ याद करेंगे हम बंद उदय के साथ, अभी तो चौथे तक रुके हम, उदय की विच्छित्ति तक। हा? देखो फिर पढ़ लेते हम, पहले गुणस्थान के उदय विच्छित्ति कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, हाँ, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, हाँ, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 10 हो गए। हाँ, एकेन्द्रिय संबंधी वो स्थावर है, आतप है, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, वो एकेन्द्रिय के साथ लगे हुए है सारे। हाँ, दूसरे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी के चार, तीसरे में एक सम्यक मिथ्यात्व का, उसका उदय उसी गुणस्थान में, अन्यत्र कहीं है ही नहीं तो ऊपर नहीं, उसके उदय विच्छित्ति कहेंगे। और नीचे के गुणस्थानों में क्या कहेंगे? उसका अनुदय कहेंगे। वो उसका उदय नीचे कहीं पर नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं है, वहां उसको अनुदय में रखेंगे। सम्यक मिथ्यात्व में अभी अभी तो उसमें लगेगा। जैसे अनुपूर्वी है तो तीसरे गुणस्थान में चारों अनुपूर्वियों का अनुदय में रखना, ख्याल में आई बात? क्योंकि वहां विग्रह गति नहीं होती है, वो तो अनुदय वाली बात बाद में करेंगे, पर उदय की विच्छित्ति का अर्थ है नीचे के गुणस्थानों में सर्वत्र उदय होगा ही, ऐसी नहीं है बात, ये नक्की करना। पर उदय होगा तो कहां तक होगा, कौन से गुणस्थान तक? तो उस गुणस्थान तक, ख्याल में आई ना बात? ये तीसरे की, और चौथे की तो अभी बताइए आप फिर दोबारा बताएंगे। मनीषा बेन आपको याद है? हाँ, नहीं, हाँ, लक्ष्मी जी बताओ। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण चार, नरकायु देवायु, नरक गति देवगति, हाँ, वैकृत शरीर अंगोपा, चार अनुपूर्वी, हाँ, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति। ये तीन केवल थोड़ी अटपटी है, वो तो याद रह जाएगी ना, तो बाकी तो आसान है, क्योंकि चौथे गुणस्थान के कषाय हमको मालूम है। अब देव और नर की चौथे गुणस्थान तक होते तो उनमें पॉसिबल प्रकृतियां बता देना, उसमें उदय रूप जो प्रकृतियां होती हैं। तो अभी हम यहीं रुकेंगे, चौथे गुणस्थान तक की हमने देख लिए है ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन सना देत हो। मयंक भाई।